பிரணமோ சிதானம் நமோ ஆயுதி ஞானம் பிரணமோ உபஜாயானம் பிரணமோ லோயே சவ்வதாயானம் ஹரிசுசல்சிதமோ யாரோ சவ்வதாயானம் மங்களானம் சவ்வே சிந்தும் பரமமே மங்களம் சத்தாரி மங்களம் அரிஹந்தா மங்களம் சித்தா மங்களம் சாகு மங்களம் மங்களம் சத்தாரி லோகுத்தமா அரிஹந்தா லோகுத்தமா சித்தா லோகுத்தமா சாகு லோகுத்தமா கேவலி பணத்தோதம் லோகுத்தமா சத்தாரி சரணம் பவஜாமி அரிஹந்தி சரணம் பவஜாமி சித்தே சரணம் பவஜாமி சாகு சரணம் பவஜாமி கேவலி பணத்தம் தம்மம் சரணம் பவஜாமி யா मायामी नगर में आज से हम लोगों को चर्चा कुछ कर्म की अवस्थाओं के संदर्भ में करनी है। विषय तो सब लोगों की जिज्ञासा है, संक्रमण के संदर्भ में चर्चा की जाए। लेकिन संक्रमण क्या होता है? संक्रमण शब्द का अर्थ तो होता है परिवर्तन, बदलाव। किसमें संक्रमण की बात चल रही है? कर्मों में संक्रमण। लेकिन ये कर्म क्या होते हैं? ये कर्म कैसे बंधते हैं? बंधने वाले इन कर्मों की क्या अवस्थाएं होती है? जब तक आप उसे नहीं जानेंगे तब तक आपको संक्रमण समझ में नहीं आएगा। संक्रमण ऐसी चीज है जिससे पाप पुण्य में बदल जाता है, पुण्य पाप में बदल जाता है। कर्म प्रकृतियां एक दूसरे में बदल जाती है। हमारे द्वारा किया गया जितना पाप है वो सब पुण्य में बदल जाए और जितना किया हुआ पुण्य है ये वर्तमान के छोटे परिणामों से सब पाप में बदल जाए, इसका नाम है संक्रमण। लेकिन संक्रमण कर्मों की अवस्थाओं में सातवें नंबर की अवस्था है। कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, उन 10 अवस्थाओं को जानना जरूरी है। 10 में से 10 एक भी कम नहीं, मैं सब बतलाऊंगा आपको, संक्षेप में बतलाऊंगा लेकिन समझ में आए इतनी चर्चा करूंगा। आप सबको कर्मों की उन 10 अवस्थाओं की जानकारी होगी। ये कर्मों की 10 अवस्थाएं कौन से कर्म में होती है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कर्म 3 प्रकार के हैं। कर्म 3 प्रकार के, एक है भाव कर्म, एक है द्रव्य कर्म और एक है नौकर्म। ठीक है भाई, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौकर्म, आप पहचानते हैं इन कर्मों को कौन से कर्म है? ये भाव कर्म का मतलब है राग द्वेष, राग द्वेष के परिणाम ये भाव कर्म है। ठीक है ना, जब राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो इसके बंधता है द्रव्य कर्म। राग द्वेष के परिणामों से जो नए कर्म बंधे उसका नाम है द्रव्य कर्म। ठीक है, और द्रव्य कर्म का फल मिलने पर जो परिस्थितियां बनती है उसका नाम है नौकर्म। नौकर्म किसके कंट्रोल में है? द्रव्य कर्म के कंट्रोल में। नौकर्म मतलब है संयोग, नौकर्म मतलब है घर बार नहर मकान परिस्थितियां, जितनी भी परिस्थितियां हमारे पास में हैं, आस पास में है, चारों तरफ है, उन सब परिस्थितियों का नाम क्या है? नौकर्म। गाड़ी, मोबाइल, बंगला, स्त्री पुत्र परिवार, सब कौन सा कर्म है? ये नौकर्म। ये नौकर्म अपने कंट्रोल में नहीं है, ध्यान देना, इस नौकर्म पर कंट्रोल हमारा नहीं है। ये नौकर्म चलता है उदय के हिसाब से, जिसका नाम है द्रव्य कर्म। इसका मतलब नौकर्म द्रव्य कर्म के कंट्रोल में है और हम चाहते हैं अपने कंट्रोल में रखना, तो दुखी हुए बिना नहीं रहेंगे। हमारे दुख का कारण क्या है? हम उसको चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से। शरीर नौकर्म है, शरीर कौन से कर्मों में आएगा तीनों में से?
नौकर्म।
नौकर्म में शरीर है नौ कर्म, बीच में है द्रव्य कर्म और इधर है भाव कर्म। नौ कर्म और द्रव्य कर्म ये दोनों है पुद्गल। नौ कर्म भी पुद्गल है, द्रव्य कर्म भी पुद्गल है, भाव कर्म पुद्गल नहीं है। भाव कर्म जीव की पर्याय है, भाव कर्म हमारी पर्याय है, भाव कर्म हमारी अवस्था है, भाव कर्म एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे कंट्रोल में है। अभी इस भाव कर्म के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पूरी दुनिया, पूरी लाइफ, हमारा सुख दुख, हमारा परिवर्तन, हमारी लाइफ में जो कुछ भी होगा ये सब किस पे डिपेंड करेगा, बोले भाव कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में। अब भाव कर्म को तो संभालता नहीं है, द्रव्य कर्म दिखता नहीं है और नौ कर्म में फेरफार करना चाहता है। क्या कहा हमने? मुगल भाई वापस बोलता हूँ, भाव कर्म को पहचानता नहीं है, ठीक है, द्रव्य कर्म पकड़ में आते नहीं है, इसको तो पहचाना नहीं इसने भाव कर्म को तो, और द्रव्य कर्म इसके पकड़ में ही नहीं आते, दिखते ही नहीं है इसको, और नौ कर्म दिखते हैं तो उनको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, कंट्रोल में करना चाहता है माने अपने हिसाब से बदलना चाहता है, अपने हिसाब से परिवर्तन करना चाहता है। जबकि जनादन ये कहता है कि द्रव्य कर्म पर तेरी कंट्रोलिंग नहीं चलती, इनके ऊपर पूरी कंट्रोलिंग है द्रव्य कर्म की, नौ कर्म पर पूरा का पूरा कंट्रोल है, द्रव्य कर्म का 100% कंट्रोल है। शरीर कैसा होगा, परिस्थितियां कैसी होगी, घरवार कैसा होगा, अरे सर का एक एक बाल कैसा होगा, इसके ऊपर कंट्रोलिंग किसकी है? द्रव्य कर्म। आवाज कैसी होगी, शरीर कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, मोटा होगा, पतला होगा, रंग रूप कैसा होगा, उसका स्पर्श गंध वर्ण कैसा होगा, एक दाना हमारे मुंह से नीचे उतरेगा उसके बाद में उसकी कैसी परिस्थिति होगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल किसका है? द्रव्य कर्म का। कंट्रोल करना कौन चाहता है? हम चाहते हैं। किस पे कंट्रोल कर रहे हैं? हम कह रहे हैं दोनों पे नहीं है, दोनों पे नहीं है तेरा कंट्रोल, तेरे हिसाब से चलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। अभी कोशिश तो करता है, तो साहब आप क्या कह रहे हो, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में है, क्या बात कर रहे हो आप? आप कह रहे हो कि ये नौ कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में है, हमने हाथ उठाया तो उठा दिया, नीचे करना हो तो कर दिया, हम चाहेंगे वैसा कर रहे हैं, हमारे मन में आया ये खाना तो ये खाते हैं, ये मन में आया ये खाना है तो ये खाते हैं, हमारे मन में आया सैमसंग का खरीदना है फोन तो वो खरीद लिया, एप्पल का खरीदना है तो वो खरीद लिया, हमारे कंट्रोल में है ना। आप कैसे कहते हो हमारे कंट्रोल में नहीं है? तो कहा सुनो, कंट्रोल तो चलता है इसका द्रव्य कर्म का,
वो भी अपने हाथ में,
क्या वो भी अपने हाथ में नहीं है, कंट्रोल तो है इसका असली। अब कभी कभी इसके कंट्रोल में जो काम होना है वैसा यदि हमारा विकल्प और परिणाम हो तो हमें लगता है हमारे कंट्रोल में हो गया,
हमने किया।
समझ में आई बात क्या है? एक्चुअल कंट्रोल है द्रव्य कर्म का, लेकिन द्रव्य कर्म का के उदय से जो परिस्थिति बननी थी, जो कंट्रोल होना था, हमने ऐसा समझा, हमारे को भी वही विकल्प आया, हमारे को भी वही परिणाम आया, तो हमें ऐसा लगा कि ये नौ कर्म मेरे कंट्रोल में है। लेकिन असलियत कब सामने आती है? असलियत कब सामने आती है? जब अपनी चलती नहीं है, जब मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो और ऐसा होता नहीं, पीढ़ी से चोटी तक का जोर लगा लेते हैं, दर्द नहीं हो, दर्द ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, और फिर होता नहीं है तो फिर क्या कहता है अपने दोस्तों से, पड़ोस में, घर में क्या कहता है? अब ये तो ऐसे ही चलेगा, अब ये अब क्या करें, अब ये तो दर्द तो कब छूटेगा, अब तो मरे ही पीछे छूटेगा इससे, अब क्या करें पंडित, अभी तो चल रही है, अब क्यों पहले खूब जोर लगा लिया हमने, हमारे कंट्रोल में नहीं चला। एक कर्म है, तीन कर्मों में से ये तीनों कर्म है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इन तीनों कर्मों में से अकेला भाव कर्म हमारे कंट्रोल में है। और सुनो, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, नौ कर्म तुझे सुखी दुखी नहीं करता, नौ कर्म से सुख दुख का संबंध नहीं है, द्रव्य कर्म तुझे सुखी दुखी कर सकता नहीं है क्या, और भाव कर्म माने परिणाम कल हमने कही थी सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं और ये परिणाम हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सुखी होना और दुखी होना हमारे हाथ में है। कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें सुखी नहीं कर सकता, इसकी कंट्रोलिंग अपने पास में। अब ये संयोग से सुखी होता है, ये संयोग से दुखी होता है, ये परिस्थितियों के आने जाने से दुखी होता है, परेशान होता रहता है, कितनी बड़ी भूल में है। अपनी कंट्रोलिंग दूसरे के हाथ में दे रहा है कि नहीं साहब बहुत दुखी हो रहा है, क्यों? कि वो अंगूठा दिखा रहा है। सामने वाला क्या कर रहा है? सामने वाले ने ऐसे अंगूठा दिखाया और ये दुखी हो रहा है कि तुम क्यों दुखी हो रहे? वो अंगूठा दिखा रहा है मेरे को, तू क्यों दुखी हो रहा है? तूने अपना कंट्रोल, अपने सुख दुख का कंट्रोल सामने वाले के अंगूठे के हाथ में दे दिया। संभालो अपने आप को, अपने परिणाम यदि संभलेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं, अपने परिणाम बिगड़ेंगे तो हम दुखी हो सकते हैं। दुखी होना और सुखी होना ये हमारे हाथ में है, दुखी होना और सुखी होना ये कर्म के हाथ में भी नहीं है, माने द्रव्य कर्म के हाथ में भी नहीं है और नौ कर्म के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म और नौ कर्म दोनों परद्रव्य है और परद्रव्य में हमारी चलती नहीं। और जबरन चलाना चाहता है तो जबरन चलाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? दुख के अलावा और कुछ हाथ में लगेगा, मत चलाओ उसमें, जबरदस्ती कोशिश मत करो। जहाँ चलती है वहां चलाओ और जहाँ नहीं चलती है वहां मत चलाओ। देखो लोक में भी ऐसा कहा जाता है, भाई साहब काम वही करना चाहिए जो अपने कंट्रोल में हो। दुनिया में भी ऐसा ही कहते हैं अपन, बिजनेस वही करना जिसकी नॉलेज हो।
बस
जहाँ तुम समझते ही नहीं हो जबरदस्ती उसमें टांग लगाओगे तो क्या होगा भूपेन भाई? नुकसान खाएगा,
नुकसान खाएगा।
अब हम कह रहे हैं तेरी 100% जहाँ चल सकती है तेरे भावों में, तेरे परिणामों में, उसको तो तू संभालता नहीं है, उसकी तुझे खबर नहीं है, उसको देखता नहीं है। द्रव्य कर्म तो दिखते नहीं है और नौ कर्म में ये ऐसा खींच लूं, ये ऐसा कर लूं, ये मेरे पास में आ जाए, इसको हटा दूं, इसको हटाने के चक्कर में और इसको सटाने के चक्कर में, जिनको अनुकूल समझता है उनको अपने पास में लाना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, जिनको प्रतिकूल समझता है उन्हें दूर हटाना चाहता है, दूर भगाना चाहता है। ये समझता ही नहीं है तेरे हटाने से हटते नहीं है, तेरे सटाने से सटते नहीं है। पूरा ज्ञान है। अभी देखो इससे और मार्मिक बात कहता हूँ मैं, त्याग जिसे आप कहते हैं, जिसे आप ये कहते हैं कि हमने ये छोड़ दिया और हमने ये इकट्ठा कर लिया, हमने कहा इकट्ठा करना भी तेरे हाथ में नहीं था और छोड़ना भी तेरे हाथ में नहीं है। तेरे छोड़ने से छूटता नहीं है और तेरे इकट्ठा करने से इकट्ठा होता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोलिंग इसकी है, बीच वाले की, द्रव्य कर्म की है कंट्रोलिंग। अब चूंकि द्रव्य कर्म अदृश्य है, दिखते नहीं है हमारे, अरूपी तो नहीं है,
अरूपी नहीं,
द्रव्य कर्म तो पुद्गल है ना, स्पर्श और गंध वर्ण है तो रूपी, लेकिन आंखों से दिखते नहीं। आप सोचिए यदि ये द्रव्य कर्म नहीं हो तो फिर ये नौ कर्म किसके कंट्रोल में हो? मान लो यदि द्रव्य कर्म को पिक्चर से हटा दें अपन, हमने जो दिखते ही नहीं है आप उसको मानने की बात कर रहे हो, नौ कर्म दिखते हैं, भाव कर्म अपने पकड़ने आ रहे हैं, दो चीजें है ना, नौ कर्म दिख रहे हैं, भाव कर्म हमारे महसूस करने में आ रहे हैं, और ये जो द्रव्य कर्म है ये दिखते नहीं है, पता नहीं है भी या नहीं, हटा दो इनको, द्रव्य कर्म को हटा दिया तो फिर क्या होगा कि ये पूरे के पूरे नौ कर्म पर कंट्रोल किसका है ये बताओ? भाव कर्म का कंट्रोल है, लेकिन भाव कर्म का कंट्रोल तो दिखता नहीं है। आप तो चाहते हो कि डॉलर की रेट बढ़े और वो तो स्थिर है, 65-67 रुपए के ऊपर टिका हुआ,
भाव कर्म तो चेतन है।
हाँ, और वो आज
स्वतंत्र
स्वतंत्र है, बिल्कुल एक दूसरे पर चलती ही नहीं है। भाव कर्म की नौ कर्म के ऊपर कैसे चलेगी? नौ कर्म भाव कर्म के कंट्रोल में हो नहीं सकता है। इसलिए भाई बहुत अच्छी बात तो यही है कि आप नौ कर्म से भी दृष्टि हटाओ, आप द्रव्य कर्म से भी दृष्टि हटाओ और आप अपने भावों को संभालो। जब आपके भाव संभलते हैं तो उन भावों से द्रव्य कर्म बंधता है, द्रव्य कर्म का उदय आता है तो नौ कर्म मिलते हैं। नौ कर्म मिलने पर अब ये जीव पुनः इसके साथ में जुड़ान करे, क्या माने वापस भाव कर्म करे तो फिर द्रव्य कर्म बन जाता है, फिर उसका फल मिलेगा तो नौ कर्म मिल जाएंगे, फिर नौ कर्म के साथ में जुड़ान किया तो भाव कर्म खड़े हो जाएंगे, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म बन जाएगा, फिर द्रव्य कर्म के उदय से नौ कर्म मिल जाएंगे, फिर नौ कर्म मिले संयोग मिले इसमें राग द्वेष किया तो भाव कर्म हो गया, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म बन गया, फिर द्रव्य कर्म से नौ कर्म बन गया। कि पंडित जी ये घुमाते रहोगे क्या, हम क्या करें, घूम ही रहे हो अनादिकाल से, इसी चक्कर में तो घूम रहे हो, हम थोड़ी ना घुमा रहे, हम तो ये बता रहे किस तरह से घूम रहे हो। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल से टूटने का कोई उपाय है क्या, इससे बचने का कोई उपाय है क्या, इन तीनों में से ये जो तीन है, ये जो ट्रायंगल बन गया है, सर्कल बन गया है इस तरह का, इससे बचने का कोई उपाय है क्या, कि एक है उपाय। बोले क्या उपाय है, कि द्रव्य कर्म का उदय नहीं आए, बोले वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि नौ कर्म ना मिले सामने आते हैं तो गड़बड़ होती है, नहीं वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर क्या है अपने कंट्रोल में, बोले भाव कर्म तुम्हारे कंट्रोल में है। तो ये जो भाव हुए, यदि ये नौ कर्म के साथ में जुड़ान ना करे तो ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म नहीं बंधेंगे, जब द्रव्य कर्म नहीं बंधेंगे तो फल में नौ कर्म नहीं मिलेगा, और नौ कर्म नहीं मिलेगा तो उसके प्रति राग द्वेष करके भाव कर्म नहीं होंगे, ये तीनों ही खत्म हो जाएंगे। क्या कहा, तीन तरह के कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म। ठीक है, भाव होंगे तो कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे तो फल मिलेगा, फल मिलता है। अब फल जो कुछ भी मिला, अच्छा शरीर है, खराब शरीर है, परिवार जैसा भी है, इसने वापस उसके साथ में जुड़ान करके राग द्वेष खड़ा कर लिया और ये सर्किल चलता रहा। भाव कर्म होने पे द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नौ कर्म। अब नौ कर्म मिलने पर राग द्वेष नहीं करे, बोलो ये नौ कर्म मिले और हमने यहाँ नहीं किया, ये चीज ऐसी है हमारे हाथ में जो अपने कंट्रोल में है और इसको हमने रोक दिया भाव कर्म को, तो अब सबसे छुटकारा मिल गया। हर समय के हमारे भावों से कर्म बंधते हैं, उसका नाम है बंध। हम इन तीन कर्मों में से चर्चा किसकी करने वाले, बंध की, बंध की करेंगे चर्चा, द्रव्य कर्म की करेंगे चर्चा। इम्पोर्टेंट बात है, मैं कर्म की 10 अवस्थाएं सिखाने वाला हूं आपको, कर्म की 10 अवस्थाएं सिखाऊंगा। सबसे पहली कर्म की अवस्था का नाम है बंध, पहली अवस्था का नाम बंध। ये बंध कैसे होता है, ये बंध किसका नाम है, ये बंध किसे कहते हैं, बंध का स्वरूप क्या है। उन्हें चार प्रकार का बंध होता है, बंधन कितने प्रकार का,
चार
प्रकार का, जानते हैं ना आप,
प्रदेश,
स्थिति और अनुभाग, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग, चार प्रकार का बंध है। ये चार प्रकार का बंध कंट्रोल में किसके है, भाव कर्म के। इसका मतलब होगा तो सारा काम यहाँ से, देख रहे हैं अभी इसको, अपन समझ रहे हैं इसको, लेकिन इसको समझ करके कंट्रोल करना हो तो इसको मत करना, करना इसको,
भाव
इसको कंट्रोल करना, तो ये कंट्रोल हो जाएंगे और ये कंट्रोल होंगे तो ये सब उसके हिसाब से चलेंगे। अब क्या करता है, ये पैसा तो घूम जाता है, धन चाहता है, संपत्ति चाहता है, और उसके लिए माथा मारता है। अब इसको पता नहीं कि ये इसके कंट्रोल में है, और ये जो कंट्रोल है इसका भी कंट्रोल इसके पास में रहता है,
भाव कर्म
के पास में। माने द्रव्य कर्म भी भाव कर्म के ऊपर बेस है, जैसे भाव करेंगे वैसा द्रव्य कर्म बंधेगा, वैसा ही बंधेगा। ये कंट्रोलिंग हो गई, जैसे भाव होंगे वैसे ऑटोमेटिक द्रव्य कर्म बंधेंगे। चार अवस्थाएं कही हमने, पहली अवस्था का नाम है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध किसे कहते हैं, क्या सर थोड़ा ध्यान देना, शब्द हो सकते हैं नए हो आपके लिए। प्रदेश बंध किसका नाम है, आत्मा के प्रदेश,
आत्मा के प्रदेश,
और कर्म के परमाणु वो प्रदेश है, कर्मों के
प्रदेश,
इन दोनों का बंध जुड़ना, बोले प्रदेश बंध। कितना सरल बात हो गई, आत्मा के प्रदेश और कर्म परमाणुओं की संख्या, वो कर्मों के प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों से कर्म के प्रदेशों का जो बंधन हुआ उसका नाम है प्रदेश बंध। क्या,
प्रदेश बंध,
प्रदेश बंध,
वो बन गया,
वो बंध गया,
और दोनों साथ में बैठे हैं,
हाँ दोनों साथ में, दोनों साथ में, इसका नाम प्रदेश बंध। अब जैसे ही प्रदेश बंद हुआ, अनंत कर्म परमाणु आत्मा से आकर के चिपके, दोनों साथ में है, इनमें प्रकृतियों में बंटवारा हो गया अपने आप, क्योंकि आत्मा तो एक था और जो कर्म परमाणु आए वो थे अनंत अनंत। एक आत्मा के साथ में कितने कर्म बने?
अनंत
अनंत अनंत कर्मों ने बांधा है। आपको पता है ये भूमट सार का कथन है, लोग कहते हैं समय सार में आत्मा की महिमा और घूमट सार में
कर्मों
की महिमा। मैं कहता हूँ घूमट सार में कर्म की महिमा नहीं, कर्मों की हैसियत बतलाइए। क्या हैसियत है कर्मों की इस आत्मा के सामने? एक अकेले आत्मा को बांधने के लिए एक कर्म पर्याप्त नहीं है, एक अकेले आत्मा को बांधने के लिए दो कर्म परमाणु नहीं बांध सकते, पावर नहीं है उनमें। एक अकेले आत्मा को बांधने के लिए अनंत कर्म परमाणु एक साथ आकर के बांधे।
प्रदेश को
बोलो आप सोचिए, अनंत कर्म परमाणु आकर के बांधे इस आत्मा को, तब जाकर के बांधने में समर्थ हो सके। और वो भी पता है कब? जब आत्मा रूपी शेर सो रहा हो तब।
बाबा
यदि ये आत्मा रूपी शेर जागृत हो जाए तो वो अनंत मिलकर के भी इसको बांधने में समर्थ नहीं। कौन पावरफुल है बताओ, कर्म बलवान या आत्मा बलवान?
आत्मा।
कौन 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 पावरफुल है, किसमें कितनी ताकत है हमें बतलाइए। एक पुलिस वाला ऐसा है, उस जवान को चारों तरफ से 10 डाकुओं ने घेर लिया और फिर भी वो बच करके निकल गया यदि पुलिस वाला, तो आप क्या कहेंगे? यार ताकत तो है उसमें, होशियार है। 10 को भी जीत करके निकल गया, 10 ने घेर लिया था और हमने कहा 100 ने घेर लिया हो और उसके बावजूद वो 100 को परास्त करके निकल जाए तो
कितना बलवान।
और यदि 1000 मिलकर के भी उसे बांधने में समर्थ नहीं हो तो वो कितना बलवान है? 10,000 मिलकर के भी बांधने में समर्थ नहीं हो तो कितना बलवान है? हम कह रहे हैं एक अकेला आत्मा और कर्म परमाणु अनंत, और अनंत मिलकर के बांधने में समर्थ नहीं है तो आत्मा कितना बलवान है? और वो अनंत मिलकर के भी तब बांधते हैं जब सो रहा हो, जब बेचेत हो, जब अपने आप की खबर नहीं हो, जब अपने आप की पावर को पहचानता नहीं हो। यह आत्मा अपने आप की पावर को पहचानता नहीं है, इसलिए वे कर्म फिर भी अनंत मिलकर के हावी होते हैं इसके ऊपर। एक क्षण मात्र के लिए यदि आत्मा जागृत हो जाए, सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, अपने स्वरूप का दर्शन कर ले वे, तो फिर कर्म परमाणुओं की ताकत नहीं है जो इसकी तरफ आंख उठा करके देखे। शेर सोया हुआ है, पकड़ने के लिए लोग चले गए, चारों तरफ से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शेर को पकड़ना है, सोते हुए शेर को नजदीक पहुंचे हैं, जाल हाथ में है, बंदूक हाथ में है, क्या हथियार है, और चारों तरफ से घेर रखा है शेर को पकड़ने के लिए। और उसके नजदीक पहुंचते पहुंचते शेर जगा नहीं, शेर ने तेजी से सांस ली, भागते हैं सब लोग। देखो क्या हालत है, वो शेर जग जाए तब तो टिक ही नहीं सकते तुम लोग कोई भी। वो तेजी से करवट भी लेने के लिए थोड़ा सा हिलता भी है तो आप घबराते हो। ऐसे ही ये आत्मा वस्तु स्वरूप की चर्चा करने के लिए, ये आत्मा अपने स्वरूप की बात को जानने के लिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा कौन है, इस गायक भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है, ये अनंत गुण और अनंत शक्तियों की चर्चा करने के लिए जब ये आत्मा प्रवृत्त होता है, तो जैसे ही प्रवृत्त होता है वैसे ही कर्मों में खलबली मच जाती है। प्रवृत्ति हुई है अभी, अभी आपको पता नहीं है, अभी आप जिनवाणी की चर्चा सुन रहे हो सिर्फ, आपने अभी सिर्फ ये बात सुनी है कि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, न इसका अनुभव किया है न इसका श्रद्धान किया है। क्या भाई साहब, श्रद्धान भी नहीं है, अनुभूति का विषय भी नहीं है, आपको जिनवाणी की इस बात पर अभी भरोसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ कर्णेन्द्रीय का विषय बना है। आपको पता नहीं है आपके अंदर बैठे हुए कर्मों में खलबली मच रही है, अरे क्या सुन रहा है, ऐसा नहीं हो कल मकान खाली करना पड़े। बोलो संभावना लग रही है ऐसी, क्योंकि इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई साहब किसी भी दिन
हमको जाना पड़ेगा।
ऐसा ऐसा अंदर कर्मों में खलबली मच रही है। कब? ये जिनवाणी की चर्चा कान में पड़ने मात्र से। आप सोचिए कैसा चमत्कार होता है इस जनवाणी की चर्चा को सुनने मात्र से जब ऐसा चमत्कार होता है, तो जब ये जनवाणी की चर्चाएं हृदय में उतरती है, जब श्रद्धा का विषय बनती है, तो सारे कर्म नष्ट हो जाएं, कौन से आश्चर्य की बात, क्यों नहीं होंगे। जब ये चर्चा सुनने मात्र से हमारे परिणाम मंद हो जाते हैं, जब ये चर्चा सुनने मात्र से हमारी कषायें चली जाती है, मंद हो जाती है, जब ये चर्चा कान में पड़ने मात्र से हमारी आकुलता मिट जाती है, सिर्फ चर्चा विकल्प में आई है और आकुलता मिट गई हमारी, बहुत आकुलित हो रहे थे, बहुत टेंशन चल रही थी, बहुत घबराहट चल रही थी, उधर उधर चल रही थी बहुत ज्यादा, और जैसे ही हमारे को विचार आया कि जो होना है तो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने लाया,
खत्म
खत्म। जैसे ही हमें ये विचार आया, क्रमबद्ध है सब वस्तु का परिणमन, जैसे ही विचार आया, परिस्थितियां तो उदय अनुसार है, मन स्थिति को संभाल
बाबा,
जैसे ही ये विचार आया तुरंत क्या होगा बोलो, अब आकुलता का क्या होगा, ज्यादा आकुलता करने की बात नहीं है, जो होना था तो हो गया, कोई बात नहीं, मार्केट एकदम धराशायी हो गया, ऊपर से नीचे आ गया, अब कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, तो कुछ कर नहीं सकता है उसने, अपने परिणामों को संभाल, बस ये काम कर, एक समय के इस परिणाम मात्र से, इस विचार मात्र से जब वो आकुलता धूल धूमिल हो जाती है, तो सोचिए यदि वो श्रद्धा का विषय बन जाएगा, यदि वो जाएगा भगवान आत्मा अनुभूति का विषय बन जाएगा, तो ये कषाएं अनंतानुबंधी ढूंढते रह जाओगे, कहाँ है अनंतानुबंधी, न अनंतानुबंधी दिखेगी, ना अप्रत्याख्यान दिखेगी, ना प्रत्याख्यान न संज्वलन, सर्व कषायों का अभाव हो जाएगा, न मिथ्यात्व दिखाई देगा, न कर्म दिखाई देंगे, ये सारे कर्म जड़मूल से उखड़ जाएंगे, इतना बड़ा काम हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, वर्तमान परिणामों को संभालो, बस ये अपने कंट्रोल में, भाव कर्म, भाव हमारे कंट्रोल में है, द्रव्य कर्म उसके अनुसार बनते हैं, तो बात क्या कही, प्रकृति बंध नहीं, पहला प्रदेश, पहला प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, कर्म के प्रदेश, शिव के प्रदेश बंद हो गया बराबर। अब प्रदेशों के बंधने के बाद एक अकेले आत्मा के साथ अनंत आए थे ना बांधने के लिए, उन अनंत को बांट दो आठ भागों में, वो कहलाएगा प्रकृति बंध। क्या था, जो कर्म अनंत मिलकर के आए थे आत्मा को बांधने के लिए, उन अनंत कर्म परमाणुओं का जैसे अनंत का ऑटोमेटिक बंटवारा हो गया, प्रकृतियों में कुछ ज्ञानावरणी की प्रकृति में कुछ परमाणु, कुछ दर्शनावरणी की प्रकृति, कुछ मोहनी की प्रकृति, अंतराय की प्रकृति, इन प्रकृतियों में जो बंटवारा हो गया उसका नाम है प्रकृति बंध। बंध की चर्चा कर रहे हैं, कर्मों की 10 अवस्थाएं बतलाना है, पहली अवस्था का नाम है बंध, बंध वाली अवस्था की चर्चा चल रही है, ठीक है ना, बंध के चार भेद बतलाए हमने, प्रदेश हो गया, प्रकृतियों में बट जाना वो प्रकृति हो गई, अब ये जो बंध था जो प्रकृतियों में बट गया था, उनमें हमारे उसी भाव कर्म से कितने टाइम पीरियड के लिए वो बंधा, उसे कहते हैं स्थिति बंध, और कैसा फल देगा उसे कहते हैं अनुभाग, ठीक है, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, चार हो गए, ये सब है बंध। पहला कर्म की पहली अवस्था है बंध, सुनो आगे की अवस्थाएं कौन सी है, सत्ता, बंध के बाद सत्ता, फिर है उदय, उदीर्णा, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, उत्कर्षण मतलब इशारे से समझ में आ रहा है, बढ़ना, और अपकर्षण, घटना, और संक्रमण,
संक्रमण
बदलना,
बदलना,
ठीक है, उपशांत माने दबे रहना,
दबे रहना,
कोई हलचल नहीं होना, फिर है एक निरक्ति और निकाचित, निरक्ति और निकाचित, ये 10 अवस्थाएं हैं कर्मों की, 10 शब्द कहे हैं हमने, 10 में से मुख्य रूप से चर्चा तो करेंगे संक्रमण के बारे में, लेकिन समझेंगे सभी, क्योंकि हमारे वर्तमान भावों और परिणामों की पावर वो ख्याल में आती है इन सबको समझने से, अपनी पावर को समझना, देखो भाई अपनी पावर यदि अपने समझ में आ गई, तो अपने को अपनी पावर समझ में आने से अपन पावरफुल हो जाते हैं। इतना ही तो है, परिणाम ही तो होते हैं, और क्या होता है। भावों से ही तो व्यक्ति अपने आप को एकदम उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है एकदम। जिसे जोश कहते हैं उस जोश में काम हो जाता है। अंदर में जैसे ही आपको जोश आ गया कि मैं पावरफुल हूँ, कर्मों की कोई ताकत नहीं है, कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कर्म में मुझ में नहीं, कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं, ये पावर जैसे ही अंदर में आ गई, अब क्या होगा, मुक्त हो गए, मुक्त हो जाओगे आप कर्मों से, कर्मों को जीत लोगे आप। ये कर्मों को जीतने के लिए सारी चर्चा चलती है। बंद होने के बाद क्या होता है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुवाद, चारों प्रकार का बंध। बंधने के बाद जो कर्म बंधे हैं, बंधने के बाद बोले वो सत्ता में आते हैं। सेकंड पोजीशन क्या है,
सत्ता।
सत्ता क्या चीज है, सत्ता तो आप जानते ही है ना, अभी ट्रंप की सत्ता चल रही है ना यहाँ। सत्ता मतलब सद्भाव, सत्ता मतलब मौजूदगी, सत्ता मतलब अस्तित्व। कर्म बंधने के बाद में अब वो अस्तित्व में आए हैं, लेकिन आकर के उसने बांध दिया, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक कर्म सत्ता में है तब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कर्म जब तक सत्ता में है तब तक सोया हुआ है। जब तक वो सत्ता में है तब तक तुम निश्चिंत होकर के घूम सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन वो उदय में आ गया उदय में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बंधा है तो बंधने के तुरंत बाद में सत्ता में पड़ा है, और सत्ता में पड़े रहने के बाद कुछ समय बाद में उसका फल मिलता है, वो अवस्था है तीसरी अवस्था, उसे कहते हैं उदय। पहली अवस्था बंध, दूसरी अवस्था सत्ता, तीसरी अवस्था उदय। आपसे पूछूंगा साहब नाम, क्या साहब, दस सुनूंगा आपसे, ध्यान रखना। पहली अवस्था दूसरी
सत्ता,
तीसरी
उदय।
उदय बंध, सत्ता और उदय। बंध माने बंधना, सत्ता माने पड़े रहना, और पड़े रहने के बाद में कभी भी विस्फोट करना, उसका नाम उदय।
सत्ता में क्या
फर्क है, जो स्थिति जो है ना वो कर्मों की दस अवस्थाओं में नहीं है, स्थिति बंध में पड़ी है, ठीक है ना। हाँ, कब तक उसकी स्थिति है। सत्ता जो है वो प्रत्येक निषेध की अलग अलग है। जैसे देखिए, एक कर्म की स्थिति पड़ी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, अपने को पता है मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी स्थिति है। अब लेकिन उसकी जो सत्ता है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में बट गया है। देखो ध्यान देना, कोई कर्म अभी बंधा, बंधने के बाद में जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बंधा, तो इतने टाइम तक तो वो फल नहीं देगा, इसे कहते हैं अवादा। अवादा के बाद पहला समय उदय में आया, फिर दूसरा समय उदय में आया, फिर तीसरा समय उदय में आया, फिर चौथा समय उदय में आया। ऐसे उदय में आने के लिए वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आता रहेगा कंटिन्यूअसली। क्या समझ में आ रही है बात, क्या है। कर्म बंधने के बाद अवादा काल को छोड़कर जितनी उन कर्मों की स्थिति है उतने समय तक वो कर्म उदय में आता रहता है। ये तो हो गई स्थिति, अलग अलग कर्म की स्थिति। लेकिन जो सत्ता है वो सत्ता प्रति समय कम होती जा रही है। क्या कहा, सत्ता में आया एक पुंज। जैसे समझ लो आप 10 लीटर दूध खरीदा हमने, क्या 10 लीटर दूध की स्थिति, जो दूध खरीदा है उसकी स्थिति समझ लो 24 घंटे की है। स्थिति मतलब वो कब तक टिकेगा, वो दूध कब तक चलेगा, 24 घंटे मान लो आप उदाहरण के तौर पर, ये 24 घंटे चल सकता है, इतनी हो गई उसकी स्थिति। अब सत्ता कितनी है, बोले सत्ता में जो 10 किलो था ना उसका नाम है सत्ता। सत्ता और स्थिति, स्थिति टाइम पीरियड का नाम है और सत्ता उसकी क्वांटिटी है, उसका वजन। अब वो जो सत्ता है वो सत्ता भी 24 घंटे की मर्यादा वाला था, एक घंटे में हमने 1 किलो खत्म कर दिया तो सत्ता में 9 किलो रह गया। फिर डेढ़ दो घंटे बाद में, तीन घंटे बाद में 2 किलो और खत्म हो गया, अब 7 किलो रह गया क्या? तो वो जो हाँ कब तक कितना है वो अंदर में पड़े हुए कर्म परमाणु, वो है पत्ता। कितने टाइम तक है वो है स्थिति। बंद पत्ता, पत्ता के बाद में कोई भी कर्म बंधते ही उदय में नहीं आता, थोड़े टाइम बाद में फल देता है। जिस जो थोड़े टाइम बाद में फल दिया है उस टाइम पीरियड को कहते हैं अवाधा, अवाधा काल। उसे क्या कहेंगे? अवाधा काल। अवाधा काल के बाद में वो कर्म उदय में आता है, माने फल देता है। जब वो कर्म फल देता है तो हम उसे कहते हैं उदय। अवाधा काल के बाद में जब कर्म ने फल दिया तो वो कहलाता है उदय। उदय के बाद में क्या होता है? जब कर्म का उदय आएगा तब क्या होगा? फल मिलेगा, नौ कर्म मिलेंगे, संयोग मिलेंगे, परिस्थितियां बनेगी। उदय में आने के बाद में कर्म छूट जाता है। कोई भी कर्म जो बंधा था वो कर्म उदय में आने के बाद में अब टिका नहीं रहेगा, अब गया। तीसरी अवस्था के बाद चौथी अवस्था है उदीर्णा। ये बहुत खतरनाक है स्थिति, उदीर्णा। उदीर्णा मतलब उदय तो होता है नॉर्मल, फल देने को कहते हैं उदय। फल मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, धीरे धीरे एक बूंद बूंद करके गिर रहा है, उसका नाम है उदय। और एक साथ बहुत तेजी से आया, उसका नाम है उदीर्णा। उदीर्णा मतलब छप्पर फाड़ के फल भी, पाप कर्म का उदय की भी उदीर्णा हो सकती है और पुण्य के फल की भी उदीर्णा हो सकती है। जब पुण्य की उदीर्णा होती है क्या, तो आप बिजनेस कमा रहे थे नॉर्मली आपकी इनकम मान लीजिए $25,000 की थी मंथली, तो 15-25,000 मंथली चल रहा था आपकी, रनिंग में चल रही है। तो ये चल रहा है उदय निरंतर। और एक साथ $2 मिलियन एक महीने में कमा लिया आपने, ये क्या हुआ? बोले वो जो बैलेंस जो था ना पुण्य का, वो एक साथ उदीर्णा हो गई उसकी, उसका एक साथ फल मिल गया। ऐसे पाप कर्म की भी उदीर्णा हो जाती है। अनेक बार ज्ञानियों के जीवन में अंतिम समयों में पाप कर्म की उदीर्णा होती हुई दिखाई देती है। क्या कहा? ज्ञानियों के जीवन में, वो तो किसी के भी कुछ भी सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस ज्ञानी के जीवन में नेक्स्ट लाइफ में आगे जाकर उसको बहुत अच्छा फल भोगना है, तो जितना पाप कर्म था उस सबको यही उदीर्णा करके जाएगा, नहीं तो क्या स्वर्ग में जाके पाप भोगेगा? यहाँ निपटा के जाना पड़ेगा ना उसको सारा, जितना जो उसका खोटा कर्म था उस सब की उदीर्णा उसने स्वर्ग में जाने के पहले पहले यही बैठ करके कर ली।
तो पंडित जी जो कर्म है इसको तो टाइम में बांधा है,
हाँ
टाइम में रहता है, तो टाइम में उदय में आता है
ने? वो जो कर्म परमाणु जो है ना, वो कर्म परमाणु जिनकी निषेक रचना हो गई थी, हाँ। जो धीरे धीरे करके उदय में आने वाले थे, उनका बहुत सारा ग्रुप मिलकर के एक साथ उदय में आ गया।
तो टाइम में तो सब एक साथ,
वो जल्दी आ गया उदय। आगे जो उदय में आने वाला था, जो कर्म 5 साल बाद में उदय में आने वाला था, वो कर्म अभी जल्दी उदय में आकर के गिर गया, इसका नाम है उदीर्णा।
तो आप ला सकते,
अपन ला नहीं सकते, अपने परिणामों के निमित्त से उदीर्णा होती है।
तो अपने जो बांधा है वो उदीर्णा अपने हाथ में नहीं,
अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में तो सिर्फ अपने भाव करना है भाई, और हमारे भावों के निमित्त से उदीर्णा हो जाती है।
परिणामों के बिना उदीर्णा हो सकती है,
वर्तमान परिणाम तो होंगे ही,
किसी को आयु के कर्म एक साथ उदीर्णा में आ गए,
हाँ,
तो उसकी अवस्था उससे भाव को कुछ फर्क नहीं किया, लेकिन
हो सकता, लेकिन जो हमने भाव किए थे पहले उनके ऊपर डिपेंड है, जो कोई भी भाव हमारे द्वारा पहले किए गए ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। सारा का सारा खेल कर्मों की जो 10 अवस्थाएं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन 10 की 10 अवस्थाओं का खेल पूरा का पूरा भावों पर निर्भर करता है। ये सारा कंट्रोल भावों के ऊपर है। कर्मों की 10 अवस्थाओं को कंट्रोल करना हो तो भावों पर कंट्रोल करो। हमारे भाव यदि कंट्रोल में है तो 10 अवस्थाएं कंट्रोल में हो जाएंगी। सब
एक धर्म क्षेत्र में जो चित्र गुप्त चौका रखता है तो उसमें कौन रखता है?
इसमें कोई नहीं रखता है, यही तो बात है। ये पूछते हैं मुझे चित्रगुप्त जो चोपड़ा रखता है यहाँ कौन रखता है?
यहाँ बाप बेटा है,
यहाँ बैठा है सब।
वो बाप बेटा है,
वो बाप बेटा है। लोगों को मालूम नहीं
है
उसका अपना।
वो जो चित्रगुप्त बैठा है उसके भी कर्म चल रहा है अंदर, उसको भी जवाब देना है। तो हर समय, क्योंकि देखिए जहाँ कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति बिठा दिया जाएगा वहाँ गड़बड़ी होने की संभावना 100%
ऑनेस्टी नहीं हो सकता,
ऑनेस्टी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी ऑनेस्ट व्यक्ति हो फिर भी बेईमानी हो ही जाती है। क्या बात कर रहे हो साहब, आप किसी की ईमानदारी पर उंगली उठा रहे हो।
परिवार आए तो सब खत्म।
हाँ, परिवार आया और खुद है। बोलो, कितना भी ईमानदार व्यक्ति हो क्या वो ईमानदार व्यक्ति ऑफिस का फोन यूज में नहीं ले सकता? ग्रांटेड है, नहीं अपना नहीं है ना वो चीज। जो चीज अपनी नहीं है और आपने उसका उपभोग किया है तो गलत काम है। इसलिए ईमानदारी तो कर्मों में ही है। कर्मों जैसी ईमानदारी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। ये कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर है। इन कंप्यूटरों में, और एक पॉइंट और है सब, ये कंप्यूटर रिश्वत, ये जो कर्म वाला कंप्यूटर है इसमें वायरस नहीं आता। ये कर्म जो है ना, वायरस तो आता ही नहीं है ये। हाँ, अरे नहीं, चक्कर नहीं है कुछ भी इसमें। ये रिश्वत नहीं लेता,
बात सही
है। इसमें अप्रोच नहीं चलती किसी की। ये कर्म किसी की बात सुनता नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये स्वसंचालित व्यवस्था है। ये किसकी सुने बताओ मेरे को। देखो प्रकृति की इस व्यवस्था में ये सनलाइट आ रही है, क्या ये किसकी सुनेगी?
कोई
व्यक्ति यदि कहेगी थोड़ा तो कमानी चाहिए धूप, क्या कुछ तो करो, इतनी गर्मी बहुत पड़ रही है। कल कितनी गर्मी थी? 100 डिग्री था।
हाँ,
98 डिग्री था। तो जो इतनी गर्मी बढ़ रही है कुछ तो करो कम। तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक है भाई। सूर्य का चलना, सूर्य की तेजी, सूर्य की गर्मी, सूर्य के जो ठंडक होगी जितनी भी उसके तापमान में, ये सर्दी गर्मी सब आपके कंट्रोल से बाहर है। ऐसे ही हम कह रहे हैं ये जो कर्म है इन कर्मों में किसी का कंट्रोल नहीं चलता। अरे यदि कोई बैठ करके लिखने वाला हो, इतना भी सही लिखने वाला हो, लिखते लिखते भी आप कुछ अशुद्ध लिख ही जाते हैं। आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है ना, आप लिखते हैं ना, फ्लुएंटली लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उसकी स्पेलिंग चेक की जाए ऊपर से नीचे तक तो एक आध पेज में एक आध स्पेलिंग तो मिस्टेक हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेलिंग पता नहीं थी, पता भी है, और ऐसा नहीं है कि आप गलत लिखना चाहते थे लेकिन उसके बावजूद भी वो गड़बड़ हो गई है। कर्मों में ऐसी गड़बड़ी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए किसी चित्रगुप्त की जरूरत नहीं है। किसको बिठाएं और बेचारा क्या करेगा? वो चित्रगुप्त खोपड़ी खाली हो जाएगी, उसकी एक जीव थोड़ी में, अनंत जीव है। कितने चित्रगुप्त बैठाने पड़ेंगे? और यहाँ तो चित्रगुप्त के एक से एक होशियार लोग बैठे। वो नरेंद्र मोदी ने हमारे नोटबंदी की क्या, और उसने सोचा कि सब आ जाएंगे पकड़ में, और उसे पता ही नहीं है कि ये एक से एक दिमाग वाले बैठे हैं। कितनी गड़बड़ी करने वाले हैं, कितने घोटाले करने वाले हैं। वो नोटबंदी अपने आप में घोटाला बन गया, कितनी गड़बड़ी हो गई उसमें, तुम्हारे को पता ही नहीं। ये कर्मों में किसी तरह का घोटाला नहीं चलता है। न कोई चित्रगुप्त है, न कोई ईश्वर है, लेकिन ये सब कर्म अपने कंट्रोल में है, अपने भाव कर्मों के कंट्रोल में। बंद सत्ता उदय उदीर्ण, 4 समय में आ गए। अभी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अपने पास में, हमारे परिणामों में इतनी पावर है। बंधे हुए कर्म जो थे, सत्ता में पड़े हुए कर्म जो थे, महेंद्र भाई संक्रमण से रिलेटेड प्रकरण है, सत्ता में पड़े हुए कर्म, पहले के बंधे हुए कर्म, पुराने पाप में बांधे हुए कर्म, उन सबको वर्तमान परिणामों के आधार पर उनमें उत्कर्षण हो सकता है। ये कौन सी अवस्था है? चौथे नंबर की अवस्था, पांचवें नंबर की अवस्था, पांचवें नंबर की अवस्था। उत्कर्षण हो सकता है और अपकर्षण भी हो सकता है। आप चढ़ा भी सकते हो और आप गिरा भी सकते हो। क्या चढ़ेगा और क्या गिरेगा आपके परिणामों के आधार पर। अंदर आपका डॉलर्स का जो ग्राफ है वो चढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। आप चाहो तो अपने परिणामों से अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हो और आप चाहो तो अपने परिणामों से अपनी बाह्य संपत्ति को घटा सकते हो। वर्तमान परिणामों की ताकत कह रहा हूं मैं, साधारण नहीं है ये बात। छोटी छोटी सी बातों में ये जीव कंजूसी करके क्या अपकर्षण कर लेता है अपने पुण्य का। 2 रुपए की कंजूसी की इसने, $2 बचा लिए इसने, क्या किया इसने मैं पता है? $2 मिलियन का इसने नुकसान कर लिया अंदर। $2 बचा करके $2 मिलियन का नुकसान कर लिया
खाली भाव से,
खाली भाव से। और इतने से उदार परिणामों से उसने जो उदय में आने वाले थे सत्ता में पड़े, सत्ता में पड़े पड़े को उसने उत्कर्षण कर दिया। $2-5 लाख के अंदर बदल गए। बड़े बड़े कर्म, ये कर्म का खेल है भाई साहब। आपके परिणामों में इतनी ताकत है, चाहे जिसको गिरा दो और चाहे जिसको उठा दो। बोलो, ये इसको पता ही नहीं है, उस पावर का पता नहीं है। ये परिणामों का चमत्कार है। आपके पास में इतनी बड़ी पावर है, ये चमत्कारिक पावर है। इतना चमत्कार है हमारे इन भावों में, इन परिणामों में। उसके कारण अंदर के अंदर बदल जाता है सब। यहाँ बैठे बैठे कैंसर के परमाणु बदल जाते हैं, बैठे बैठे किडनी फेल होती हुई सही हो जाती है, सही होती होती खराब हो जाती है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। उत्कर्षण से अपकर्षण और अपकर्षण से उत्कर्षण, ये बदलता रहता है, हर समय हो रहा है परिणामों के आधार पर। पुण्य में भी उत्कर्षण हो रहा है, पाप में भी उत्कर्षण हो रहा है। पुण्य पाप में अपकर्षण भी हो रहा है, उत्कर्षण भी हो रहा है। कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे भाव। ये ताकत है हमारे पास। बोलो। अच्छा, एक तरह के पुण्य में उत्कर्षण अपकर्षण समझाता हूँ। उत्कर्षण किसका नाम है? एक तरह का पुण्य। अब उसी पुण्य में जो आपको रस मिलने वाला है, क्या चीज वही है लेकिन उसमें मजा बढ़ गया और उसमें मजा घट गया। आप समझ में आ रही है?
एकदम एकदम बढ़िया।
बात एक ही है, एक ही लड्डू है। कुछ भी समझ लो आप, कोई भी एक चीज है भोगने के संदर्भ में, गाड़ी के संदर्भ में, आप उसी में उत्कर्षण हो गया और उसी में अपकर्षण हो गया और वस्तु जो की त्यों बनी हुई है। कैसे? आप चाहते हो उत्कर्षण करना, अपकर्षण हो जाता है। आप चाहते हो अपकर्षण करना, उत्कर्षण हो जाता है। बोलो।
सब भावों के ऊपर,
सब भावों के ऊपर है। इसलिए भावों को संभालो। और भाव कैसे संभालने हैं? इस उत्कर्षण अपकर्षण के लिए अपने भावों को कैसे संभालना है कि साहब? दुनिया में कौन व्यक्ति होता होगा जो अपने पुण्य को अपकर्षण करना चाहता होगा? चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन भाव बिगाड़ता है तो अपकर्षण हो जाता है। इसको पता ही नहीं नुकसान हो रहा है अंदर। ये दुकान चला चला करके फायदा चाहता है, अंदर में दुकान चलाता है। और जिन मंदिर में सेंटर में कोई दान मांगे तो कहता है इसलिए थोड़ी ना कमाता हूँ। इसको पता नहीं, इसके एक वाक्य में उसने मिलियंस का नुकसान कर लिया अंदर, एक वाक्य। आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आपको उसको सिर्फ अनुमोदना करनी है तत्व की चर्चा की। प्रसन्न चित्त से आपको तो ये कहना है, महेंद्र भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस इतना सा कहा और बहुत पुण्य का उत्कर्षण कर लिया और पाप का आकर्षण कर लिया साथ ही। इतना सा काम, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छा है। आप लोग सुनते हो, आप लोग बैठते हो, आप लोग चर्चा करते हो, ये बहुत अच्छा काम है। हमेशा परिणामों को उज्जवल रखना, हमेशा स्वाध्याय करने वाले, सत्संग करने वाले, प्रवचन सुनने वाले, करने वाले, पढ़ने वाले, चर्चा करने वाले, उन लोगों की सदा प्रशंसा करना। क्योंकि आपके इन प्रशंसा के परिणामों से आपको पता नहीं भला उसका नहीं होगा। आपने किसका भला किया बताओ? हमने उसकी प्रशंसा की तो उसका भला हो गया होगा उससे? इसको ऐसे लगता है मैं क्यों करूं उसकी प्रशंसा? मत कर भैया, तेरी प्रशंसा से उसका थोड़ी ना भला होना है। प्रशंसा करेगा तो तेरा ही भला होगा। ये बात समझ में नहीं आती है इसको। ये सोचता है मैं महेंद्र भाई की प्रशंसा क्यों करूं, मैं क्यों करूं इनकी प्रशंसा, हिम्मत कर, तेरे परिणामों से तू अपनी निंदा कर रहा है। अच्छे काम की सदा प्रशंसा की जानी चाहिए, छोटे कार्य की अनुमोदना नहीं होनी चाहिए। अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, कोई आ रहा है, प्रभावना कर रहा है, प्रचार कर रहा है, आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम अनुमोदना करो। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अनुमोदना तो कर सकते हो, और हमारे यहाँ जैन शासन में कृत कारिस और अनुमोदना का समान फलता है। कृत कारित और अनुमोदना, कृत माना करना, करवाना और उसकी प्रशंसा करना। बस आपने किया है, आपने करवाया है या आपने उसकी अनुमोदना की है, कौन सी चीज में? अच्छे कामों में भी और छोटे कामों में भी, दोनों जगह लगेगा। क्या माने? कर्म का उत्कर्षण भी आपके हाथ में है और अपकर्षण भी आपके हाथ में है। उत्कर्षण माने हमने कहा पढ़ना, अपकर्षण माने हमने कहा गिरना, और संक्रमण भी आपके हाथ में है।
वाह प्रभु, ये हो गया ना?
क्या अभी तो जो उतार चढ़ाव जो कहा था वो तो उसी चीज में कहा था हमने। अभी जो उत्कर्षण था वो पुण्य पुण्य में ही बढ़ गया
जी।
उत्कर्षण अपकर्षण कहा तो ये पुण्य पुण्य में ही घट करके पुण्य रह गया ये अपकर्षण, लेकिन वो पुण्य पाप में बदल जाए इसका नाम है संक्रमण। आपने जो पाप बांधा था वो पाप इन उज्जवल परिणामों से घट गया, पाप का अपकर्षण हो गया। हमारे परिणाम बहुत उज्जवल थे, स्वाध्याय के परिणाम थे। अभी पाप इतना फल मिलना था और इतना सा फल मिला, इतना फल मिलना था और इतना सा फल मिला, बोले अपकर्षण हुआ है। लेकिन अपकर्षण होकर के भी फल तो पाप का ही मिलेगा। लेकिन संक्रमण इतना चमत्कार है कि वो पाप जो बंधा था वो पाप के परमाणु पुण्य में कन्वर्ट हो गए, वो पाप का आपको फल ही नहीं मिलेगा। कितना पाप किया, कितने खोटे काम किए, कितने अनीति की, अन्याय किया, बेईमानी की, धोखाधड़ी किया, मध्य मांस मधु का सेवन किया, विषय कषायों का सेवन किया, उलझा रहा, फंसा रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत, अब रोओ मत, अभी क्या करो, वर्तमान परिणामों को संभालो। बोले इससे क्या होगा? आपके द्वारा किया गया पाप भी पुण्य में बदल सकता है। सारे लोग रोते रहते हैं, रोते रहते हैं लोग, या तो वो मजे करते पाप करते हुए, तो उनको पाप करने की मजे कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं है बंधा हुआ बैलेंस का पुण्य भी पाप में बदल रहा है, तो उसमें मजा कर रहा है ना, तो उसको पता नहीं है वो जो बैलेंस था वो बैलेंस पाप में बदल रहा है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग उस पाप के काल में क्या वो उसका और अपकर्षण कर रहे हैं और उत्कर्षण कर रहे हैं। क्या देखो, बहुत गजब की व्यवस्थाएं हैं भाई, ये कर्म की जो अवस्थाएं हैं, सात अवस्थाओं तक पहुंचे हैं अभी अपन। बहुत संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं आपको। पहली अवस्था का नाम भाऊजी, दूसरी सत्ता, तीसरी उदय, चौथी उदीर्णा। बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, क्या क्या हो गए? चार, बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, फिर उत्कर्षण, अपकर्षण। देखो ऐसा समझो, बंद
आया
ये बंद, फिर सत्ता, फिर उदय और उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, ठीक है, और संक्रमण, चेंज हो जाना, ठीक है। अभी किसमें संक्रमण होता है, कौन से कर्म कौन से कर्मों में बदलते हैं, कौन से कर्मों में संक्रमण नहीं होता है, उत्कर्षण और अपकर्षण होने पर किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, उत्कर्षण होगा तो क्या होगा, अपकर्षण होगा तो क्या होगा, संक्रमण होगा तो क्या होगा, फिर इनके बाद में एक अवस्था का नाम है उपशांत। उपशांत माने क्या? उपशांत माने कर्म उदय में भी नहीं आना और उदीर्णा भी नहीं होना, ये कहलाता है उपशांत। जब ये बस शांत है, बस कोई हलचल नहीं है उसमें, वो कहलाता है उपशांत।
जैसे कोयले पर रात होती है,
हाँ, बस दबा है वो, उपशांत। आठवीं अवस्था, नौवीं अवस्था कही हमने निदत्ती, ये थोड़ी खतरनाक कर्म है, ये
सत्ता
अलग है। ठीक है, अपन करेंगे चर्चा उसकी। अभी कौन सी बात कही अभी हमने, निदत्ती। ये निदत्ती क्या चीज है? निदत्ती माने कुछ कर्म परमाणुओं की प्रकृतियां ऐसी होती है जिन कर्म परमाणुओं में संक्रमण नहीं हो सकता और उदीरणा भी नहीं हो सकती। ऐसे कर्म है वो है निदत्ती कर्म। उन उन वो जो कर्म परमाणु थे उन कर्म परमाणु की उदीरणा भी नहीं होगी और संक्रमण भी नहीं होगा। इतना प्रगाढ़ है वो, इतना गाढ़ा बंधा हुआ है कि उनमें संक्रमण भी नहीं होगा और वो एकदम फल भी ऐसा नहीं देंगे। वो कर्म है निदत्ती।
उसमें पुण्य भी आ सकता है और पाप भी आ सकता है।
पुण्य भी आ सकता है, पाप भी आ सकता है।
अच्छा,
हाँ। अभी और सुनिए, इसके बाद में एक तो लास्ट वाला है जिसे कहा गया है निकाचित। वो और खतरनाक है। उस कर्म की क्या पोजीशन है कि उसमें उदीरणा और संक्रमण तो होता ही नहीं है, उत्कर्षण और अपकर्षण भी नहीं होता। उदीरणा, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण, इन सब के अयोग्य कर्म प्रकृतियों को निकाचित कर्म प्रकृति के 10 नाम कहे हैं अभी हमने, 10 अवस्थाओं के संदर्भ में आपको बतलाया है, बहुत संक्षिप्त परिचय दिया है अभी हमने आपको इनके संदर्भ में। मुख्य रूप से जो उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण की जो पोजीशन है उनकी मुख्य और विशेष चर्चा अपन कल और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात कोई
ये स्वरूप परम पुरुष प्रभु सद गुरु परम दान सुखदान जेने आपनी तेने सदा प्रणाम देह चता जेनी दशा वरते जे आती ज्ञानीना चरणम
जय इंद्र।